مقدس مرقس کے مطابق انجیل نواں باب
تبدیلی صورت۔ اور چھ دن کے بعد یسوع نے پترس اور یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر علیحدگی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک ایسی درخشاں اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی قصار ویسی سفید نہیں کر سکتا۔ اور الیاس موسیٰ کے ساتھ انہیں دکھائی دیا اور وہ یسوع سے باتیں کرتے تھے، اور پترس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اور ہم تین ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے، کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے۔ تب ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ انہوں نے یکایک نظر دوڑا کر سوائے اکیلے یسوع کے اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا۔ اور جب وہ پہاڑ پر سے اترتے تھے تو اس نے انہیں منع کیا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے جی نہ اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ اور وہ اس کلام کو اپنے پاس اخفا کر کے ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے سے کیا مراد ہے۔ اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ فقیہ کیسے کہتے ہیں کہ الیاس کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اس نے ان سے کہا، الیاس پہلے آئے اور سب کچھ بحال کرے، تو ابن انسان کے حق میں کیوں کر لکھا ہے کہ اسے بہت دکھ اٹھانا اور حقیر کیا جانا ہوگا؟ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ الیاس تو آ چکا ہے، اور انہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کیا، جیسا کہ اس کے حق میں لکھا ہے۔
آسیب زدہ مسرو۔ اور جب وہ شاگردوں کے پاس آیا تو ان کے گردا گرد ایک بڑے ہجوم کو اور فقیہوں کو ان سے بحث کرتے دیکھا، اور فوراً سب لوگ یسوع کو دیکھ کر نہایت حیران ہوئے اور ڈرے، اور اس کی طرف دوڑ کر اسے سلام کیا۔ تب اس نے ان سے پوچھا، تم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟ ہجوم میں سے ایک نے اسے جواب دیا کہ اے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں گنگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا، وہ جہاں اس پر قابو پاتی ہے اسے پٹک دیتی ہے اور وہ کف بھر لاتا اور دانت پیستا اور سوکھتا جاتا ہے، اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دیں، مگر وہ نہ نکال سکے۔ اس نے ان کے جواب میں کہا، اے بے اعتقاد پشت، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे मेरे पास लाओ। और वो उसे उसके पास लाए और उसे देखते ही रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ लाकर ऐंठने लगा। तब उसने उसके बाप से पूछा, कितनी मुद्दत हुई कि उसे ये हो रहा है? वो बोला, लड़कपन ही से। और अक्सर वो उसे आग में डालती है और पानी में भी, ताकि उसे हलाक करे। सो अगर तुझसे कुछ हो सके तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। पर यीशु ने उससे कहा कि क्यों अगर हो सके, मुत्तकिद के लिए सब कुछ हो सकता है। लड़के के बाप ने फौरन आंसुओं के साथ चिल्ला कर कहा, मैं इत्तकाद रखता हूं, तू मेरी बेइत्तकादी की भी मदद कर। और जब यीशु ने देखा कि हजूम दौड़ दौड़ कर जमा हो रहा है, तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म देता हूं, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्ला कर और उसे बहुत एंठा कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि ये मर गया है। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। और जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने पोशीदगी में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि ये जिन्स सिवाय दुआ और रोजे के किसी तरह से निकल नहीं सकती।
अज़ियत की दूसरी पेशींगोई। फिर वो वहां से रवाना होकर जलील में से गुजरे और वो ना चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने इंसान आदमियों के हाथ हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और कत्ल होने के बाद तीसरे दिन वो जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को ना समझते थे तो भी पूछने की जुरत ना करते थे। मुख्तलिफ हदायात।
फिर वो कफरनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा, तुम राह में आपस में क्या बहस करते थे? मगर वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। और उसने बैठकर उन बारह को बुलाया और उनसे कहा, अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में आखिर हो और सबका खादिम बने। और एक छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करे, मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है, मुझे नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसे कबूल करता है। यूहन्ना ने उससे कहा, ए उस्ताद, हमने एक को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और वो हमारा पैरो नहीं, और हमने उसे मना किया। तब यीशु ने कहा, उसे मना ना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम पर मौजजा करे और जल्द मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। इसलिए जो कोई मेरे नाम पर तुम्हें एक प्याला पानी पीने को दे, इस लिहाज से कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपने अजर से हरगिज महरूम ना रहेगा। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाते हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि खरास का पाट उसके गले में डाला जाए और वो समुंदर में फेंका जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। जिंदगी में टुंडा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो हाथ रख कर तू जहन्नम में जाए, उस आग में जो बुझती नहीं, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। और अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। जिंदगी में लंगड़ा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो पांव रख कर तू जहन्नम में डाला जाए, उस आग में जो बुझती नहीं, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। खुदा की बादशाही में काना दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आंखें रखकर तू आग के जहन्नम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छी चीज है, लेकिन अगर नमक बेमजा हो जाए तो उसे किस से मजेदार करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो।